कल हमने चर्चा किया था बालकांड के भगवान रामचंद्र की जो लीलाएं विषय में। शुरुआत में हमने कहा कि बालकांड को बालकांड क्यों कहा जाता है। बालकांड को बालकांड विश्वामित्र की वजह से कहा जाता है, रामचंद्र की बाल लीलाओं की वजह से नहीं, क्योंकि विश्वामित्र गुरु हैं और गुरु का कार्य क्या है, भगवान को जीव से मिलाना। राम को विश्वामित्र लेके आए और सीता से विवाह कराया, ये गुरु का कार्य होता है और गुरु को बालक कहा गया है। तो क्यों कहा गया है बालक, क्योंकि गुरु का दो महत्वपूर्ण स्वभाव वो बालक में पाया जाता है। सबसे पहला स्वभाव ये है, गुरु इतना महान सामर्थ्यवान होने पर भी वो सामर्थ्य के अहंकार के द्वारा प्रेरित होकर कार्य नहीं करता है, और वो सामर्थ्यवान होने पर भी एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो प्रतीत होता है। जैसे एक बालक, भले वो कितने भी अमीर परिवार का क्यों ना हो, जब वो स्कूल जाता है कोई भी अन्य बच्चे के साथ साधारण से खेलता है, तो वो अपने परिवार की वजह से उत्पन्न हुआ जो अहंकार है उसको उधर वो दिखाता नहीं है। तो ये बालक का एक स्वभाव होता है। और दूसरा स्वभाव क्या होता है बालक का, अपना चिंता नहीं रहता है, अपना स्वयं का देखभाल करने की चिंता, मुझे कौन देखभाल करेगा या मेरा क्या होगा, उसका चिंता नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि उनको मालूम है माता पिता है, देखभाल करेंगे। उसी प्रकार आध्यात्म में उन्नत व्यक्ति भगवान के ऊपर इतना भरोसा करते हैं, वो भगवान के गोद में हमेशा लेटे रहते हैं। इस प्रकार गोद में लेटा हुआ बच्चा को कोई चिंता नहीं रहता है, माँ है करके इतना विश्वास रहता है। उसी प्रकार वो बालक का भी उसी का स्वभाव रहता है, उसी प्रकार एक गुरु का स्वभाव रहता है, अपना खुद का चिंता नहीं रखते, क्योंकि उनको मालूम है भगवान के ऊपर विश्वास है, वो कभी भी मुझे जो चाहे वो मेरे से कर सकते हैं, मुझे वो देखभाल करेंगे, अवश्य रक्षवे कृष्ण, इस प्रकार का विश्वास रहता है। इसलिए विश्वामित्र की वजह से ये पहला जो कांड है बालकांड पढ़ा, नाम बालकांड पढ़ा। अभी बालकांड का प्रधान्यता क्या है, यज्ञ प्रधान है। ये दूसरा बात हमने कल चर्चा किया कि बालकांड में आपको तीन यज्ञ प्राप्त होते हैं, एक शुरुआत में, एक बीच में और एक अंत में। शुरुआत में कौन सा यज्ञ है, जिस यज्ञ के द्वारा भगवान रामचंद्र स्वयं प्रकट हुए, यानी इससे द्वारा रामचंद्र बता रहे हैं कि मैं यज्ञ के द्वारा ही प्रतिष्ठित होता हूँ, यज्ञमयम ही, मैं यज्ञमय हूँ और यज्ञ के द्वारा मैं हर चीज़ स्वीकार करता हूँ। और बीच में उन्होंने क्या सिखाया, यज्ञ को रक्षा करता हूँ। सबसे पहला यज्ञ के द्वारा प्रकट होता हूँ, दूसरा यज्ञ को रक्षा करता हूँ, और तीसरा बात क्या है, यज्ञ के द्वारा मैं सबको स्वीकार करता हूँ, जीवों को स्वीकार करता हूँ। सीता ने पूर्ण तरीके से समर्पित किया भगवान रामचंद्र को, सर्वधर्मान परित्यज्य वो महान है, पूर्ण तरीके से समर्पित किया, तो कृष्ण ने कहा कि मैं देखभाल करूँगा उनको। उसी प्रकार ये जो यज्ञ के द्वारा हर चीज़ स्वीकार करते जीव पूर्ण तरीके से समर्पित हो जाते, वो भी यज्ञ है, 100% समर्पण होना यज्ञ है। तो ये तीन चीज़ों को या तीन यज्ञों को कहा गया, इसलिए ये बालकांड जो है वो यज्ञ प्रधान कांड है। ये दो बातों को चर्चा करने के बाद हमने बालकांड का एक एक लीला को थोड़े संक्षिप्त में चर्चा करते हुए पहुँचे। सबसे पहला लीला चर्चा किया हम भगवान राम दशरथ का विलाप। इतने सारे बच्चे होने के बाद, इतनी पत्नियाँ होने के बाद भी उनके कोई बच्चे नहीं थे, तब उन्होंने संकल्प किया अश्वमेध यज्ञ करूँगा, लेकिन बीच में खबर मिला उनको अश्वमेध यज्ञ करने से आपको पुत्र नहीं मिलेगा, पुत्र कामिश्री यज्ञ करना होगा। तो पुत्र कामिश्री यज्ञ करने के लिए योग्य व्यक्ति कौन है, ऋष्यशृंग। तो ऋष्यशृंग कौन है, दशरथ की पुत्री शांति को दत्तक में दिया गया था अंगराज के जो राजा है रोमपाल, तो उनके राज्य में शांति है और शांति के विवाह होता ऋष्यशृंग। तो बाद में हम कल ऋष्यशृंग का इतिहास को चर्चा किया, किस प्रकार विभोंदक ऐसा एक शक्तिशाली ऋषि थे, उनको एक अप्सरा के वश में होने की वजह से अपनी तपस्या को भंग करना पड़ा, पुत्र की उत्पत्ति करना पड़ा, और उस पुत्र को इन स्त्रियों से संरक्षण करने के लिए ऐसा उन्होंने सिखाया था ऋषिशृंग को, सारे वेदों को सिखाया था, हर चीज़ सिखाया था, लेकिन स्त्री होता क्या उन्होंने सिखाया नहीं। तो लेकिन क्या हुआ अंततः, तो कहीं गए थे तो अंग राजा के देश से आए हुए कुछ ऋषि कन्याओं ने क्या किया, उनको मोहित करते हुए उस राज्य में लेके गए। और शांति के साथ उनका विवाह हुआ और ऋष्यशृंग को निमंत्रण दिया दशरथ ने, और दशरथ के निमंत्रण पर ऋष्यशृंग ने यज्ञ किया, पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया, उससे यज्ञ पुरुष प्रकट होके दशरथ को खीर दिए, जिसको दशरथ ने चार तीनों पत्नियों में चार भाग करके बांटा, इससे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हुए। तो बाद में हमने और एक लीला चर्चा किया, विश्वामित्र का आगमन का लीला। जैसे इन चारों का जन्म होता है, तुरंत विश्वामित्र का आगमन होता है। विश्वामित्र का क्रोध सहन नहीं कर पाए दशरथ और गदगदाने लगे, क्योंकि विश्वामित्र ने मांगा था क्या, उनको राम को भेजो, तो दशरथ को सहन नहीं हो पा रहा था, मैं कैसे भेजूँ 12 साल का पुत्र को, वो भी जंगल में भेजूँ, वो भी राक्षसों को मारने के लिए। तब वशिष्ठ आकर उनको शांत किया और विश्वामित्र इन दोनों को लेके जा रहे, राम और लक्ष्मण को, राम लक्ष्मण को लेके जा रहे हैं। और विश्वामित्र ने बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक को उच्चारण किया, बला अति बला, ये दो बहुत सुंदर मंत्रों को दिया, जिसके द्वारा व्यक्ति अतुल्य हो जाता है, उसके समान कोई हो नहीं सकता, सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। और एक दिन रात को स्वयं विश्वामित्र ने कुसा का घास से उनको शैया बनाया, उधर राम और लक्ष्मण को सुला के, अगला दिन जब राम लक्ष्मण को जगाने के पहले जब संध्या कर रहे थे, उस गायत्री मंत्र जो स्वयं विश्वामित्र ने प्रकट कराया था, उस गायत्री मंत्र का मूल देव कौन है, जब उनके स्मरण में कौन दिखाई पड़ रहा है, वो सूर्यमंडल के परमात्मा के रूप में कौन दिखाई पड़ रहे हैं, यही राम दिखाई पड़ रहे हैं जो उधर उनके बाजू में हैं। तुरंत विश्वामित्र आके स्मरण किया, वही गायत्री मंत्र का जो मूल उद्देश्य जिसको है, गायत्री मंत्र का जो मूल देव हैं, वही भगवान स्वयं कौशल्या के पुत्र के रूप प्रकट हुए। कितना भाग्यवान है कौशल्या, इसलिए तुरंत उनने उच्चारण किया, कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्ते, हे राम तो उठो, संध्या पूर्वा प्रवर्तते, संध्या पूर्व संध्या आ गई हैं, इसलिए क्या करो, उत्तिष्ठ नरशार्धूला कर्तव्यम दैवमान्हिकम, जो दैव आन्हिक कर्म है, आध्यात्मिक कर्म है, सुबह जल्दी उठ के करने होते हैं, इससे तुम जल्दी उठो। तो विश्वामित्र अनेक अनेक वो लीलाओं को सुनाया, जहाँ जहाँ राम जी जाते हैं, लक्ष्मण जाते हैं और पूछते हैं इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, राम लक्ष्मण को बहुत सारे कहानियों को सुनाया, बहुत सारे ऋषियों के आश्रमों के द्वारा लेके गए, और अंततः राम लक्ष्मण पहुँचे विश्वामित्र के आश्रम में। उधर विश्वामित्र का 6 दिन का यज्ञ था, 5 दिन कोई असुर नहीं आया, लेकिन 6ठा दिन जो है मारीच सुभाऊ आए, तो उनको मारीच को दूर कहीं फेंक दिए, सुभाऊ को मार दिया। तो हमने ये विश्वामित्र ये का यज्ञ का रक्षा करने के बाद भगवान रामचंद्र को विश्वामित्र लेके गए कहाँ, जनकपुरी में, जनकपुरी मिथिला नगरी, मिथिला राज्य में लेके गए। जब रास्ते में एक आश्रम आया, रामचंद्र ने पूछा कि इतना मनोहर है, कि मनोहरम वनम, कैसे इतना सुंदर मनोहर वन है। तो विश्वामित्र ने कहा, अरे याद दिलाया तुमने, इधर चलो, अहल्या का उत्थान सुनाया, अहल्या का उद्धार हुआ। उधर जनकपुरी जाने के बाद जनकपुरी में बहुत सुंदर दो लीला हुआ, एक का स्वयंवर का लीला, स्वयंवर का लीला है, भगवान रामचंद्र ने क्या किया, धनुष को उठाया, शिव धनुष को उठाया। तो शिव धनुष का इतिहास को भी हमने कहा, किस प्रकार विष्णु और शिव जी के बीच में जब युद्ध हुआ था नारद और इंद्र की वजह से, तो युद्ध में विष्णु ने शिव जी को हराया, तो वो शिव धनुष परशुराम को प्राप्त हुआ, परशुराम से जनक परिवार में प्राप्त हुआ। वो शिव धनुष इतना भारी धनुष था कि 300 लोग जब तक धक्का नहीं देंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ता था, इस प्रकार का बहुत भारी धनुष था। और ये जो शिव धनुष है, वो बचपन में सीता ने क्या किया था, दशरथ को ने देखा कि सीता एक गेंद पेड़ के ऊपर फंस गई, तो उसको नीचे गिराने के लिए सीधा भाग के अंदर गई और कमरे में जाके जिस पेटी में शिवधनुष रखा हुआ था उस पेटी का ढक्कन खोल के वो शिवधनुष को उठा के, वो सीता छोटी सी बच्ची है, 7-8 साल की बच्ची है, वो लेके उसको गेंद को नीचे गिराया और धनुष को जाके रख दिया। ये देख के सारे जितने भी दशरथ है और जनक है, उनके जितने भी सेवक है, प्राय हार्ट अटैक जैसा हुआ। और जनक सोचने लगे, अरे कैसे, अभी इतनी छोटी सी बालिका ये शिव धनुष इतने सारे लोगों के द्वारा जो उठता नहीं है, इतने भारी धनुष है, उसको उठाया तो चिंता होने लगा कि मैं किसके साथ इसका विवाह कराऊं। कम से कम जो उनका पति होगा उससे शक्तिशाली होना चाहिए कि नहीं, तो उसको इनको ये चिंता होने लगी। तो इसलिए स्वयंवर में उन्होंने ये धनुष रखा था। जब राम की बारी आई तो राम ने उस धनुष को उठाया। कैसे उठाया? सबसे पहले अनुमति लिया उनके गुरु का, विश्वामित्र का। हम अनुमति लेके पूछा, विश्वामित्र ने कहा देखो इसको पश्या, धनुम पश्या, देखो। तो राम ने क्या किया, धनुष को उठाया और जो रस्सी है उसको बांधने का प्रयास करने के लिए, वो धनुष को झुकाने के लिए प्रयास कर रहा है। वो लोहे का एक बड़ा सा नंदा जैसा जो है उसको झुका रहे हैं, और झुकाते झुकाते क्या हुआ, वो टूट गया। और राम एकदम ऐसा देख रहे, मैं तो खाली उसको, मुझे मेरे गुरु ने कहा लेकिन उसको देखो, मैं उसको बांधने गया तो टूट गया है। और जब वो टूटा, वो आवाज से विश्वामित्र और जनक को छोड़ के, राम लक्ष्मण को छोड़ के सब बेहोश हो गए, इतना भयानक सा आवाज आया। तो कल हमने इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को आपको सुनाया था। क्या है वो सिद्धांत? धनवो प्रणव, प्रणव प्रणवो धनु। प्रणव जो है वो धनु, धनुष मतलब क्या है, प्रणव है, प्रणव मतलब ओंकार। अब देखिए ओंकार इसी प्रकार धनुष जैसा रहता है। उपनिषदों में मुंडक उपनिषद में इस बात को कहा गया है। अभी हम सब कहते हैं नाम, नाम, नाम का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ है वो शब्द जिसके पास जाके झुकता है उसको नाम कहा जाता है। कल मैंने आपको उदाहरण दिया था, मान लीजिए आपने किसी का नाम पुकारा तो केवल वही व्यक्ति आपका बात सुनता है। क्यों? वो शब्द उस व्यक्ति के पास जाके झुका, इसलिए नमयति इति नामः। अभी भगवान का नाम क्या है? ओम। जब आप ओम बोलोगे तो किसके पास जाके वो शब्द झुकता है? भगवान के पास झुकता है। वो मतलब धनुष। तो रामचंद्र ने धनुष को झुकाया, यानी रामचंद्र के सामने धनुष झुका, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ओम जो है वो किसी और का नाम नहीं है, वो रामचंद्र है। इधर सीता जी इंतजार कर रही है राम का से विवाह करने की। तो सीता और राम का मिलन कैसे हुआ? नाम से हुआ। नाम के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान से हमारा विवाह होता है, आध्यात्मिक विवाह होता है। तो केवल राम का ही, राम को प्राप्त करना ही, हम राम के ही है, इस प्रकार का विचार जो है इस लीला में प्रकाशित किया जा रहा है। तो बाद में दशरथ को निमंत्रण देने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया। दशरथ जल्दी जल्दी सब लोगों को, अपने परिवार वालों को लेते आए मिथिलापुरी में। आके उधर सुंदर विवाह का तैयारी हो रहा है। कल हमने थोड़ा सा विवाह के विषय में भी चर्चा किया, किस प्रकार जनक महाराज ने एक बहुत सुंदर श्लोक को उच्चारण किया। खास करके दशरथ जी इंतजार कर रहे थे बाहर चारों पुत्रों के साथ। इंतजार करते हुए उन्हें पूछा कि विश्वामित्र से, हम तो इंतजार कर रहे हैं। तो वशिष्ठ से पूछा, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आप पूछिए जनक महाराज क्या कर रहे हैं। तब तुरंत वशिष्ठ ने जनक महाराज को कहा कि जो भिक्षा याटन करने के लिए आए हैं, वो जो भिक्षा देने वाले हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। तब तुरंत जनक महाराज ने कहा कि अपने घर में किसी का अनुमति लेके अंदर आना पड़ता है, तो कोई रोका है क्या उनको? किसी ने नहीं तो रोका है, जल्दी आने के लिए बोलिए, क्योंकि मेरी कन्याएं इधर अग्नि का जो ऑल्टर है उधर अग्नि के तेजस्वी होके इधर खड़ी हैं, तो वो उनका इंतजार कर रही है, देर किस बात की है, आप आओ करके। सुंदर तरीके से यज्ञ का संपन्न हुआ। जब यज्ञ का तैयारी सब चल रहा था उस समय पाणिग्रही तब इधर जनक महाराज ने ये श्लोक को उच्चारण किया कि इयम सीता मम सुता सहधर्म चरितवा। रामचंद्र को कहते हैं इयम सीता, ये सीता देखिए, ये मम सुता मेरी पुत्री है, धर्मचरितवा प्रतीक्षा च एनम भद्रम ते पाणिम गृह्णामि पाणिना। तो उन्होंने कहा पाणिम गृह्णामि, तो आपकी हाथ से सीता का हाथ को पकड़िए। तो राम ने कहा, अनेकों अनेकों संवाद है लेकिन एक बात कहता हूँ, राम ने कहा कि मैं उनका हाथ क्यों पकड़ूं? तो उनको ही बोली मेरा हाथ पकड़ने के लिए। तो जनक महाराज ने कहा नहीं, आपको ही पकड़ना होगा, क्योंकि जो भोगता है ना वो भोग्य वस्तु को पकड़ता है। मान लो आपके सामने कोई भोजन आया है तो भोजन आपके मुंह में नहीं जाता है, भोजन करने वालों को हाथ में भोजन को धारण करना पड़ता है। इसलिए आप भोक्ता हो और सीता भोग्य हैं, इसलिए आपको ही उनका हाथ धारण करना होगा करके ऐसा बातचीत चल रहा था। उस समय वशिष्ठ अपने स्वयं अपने हाथों से रामचंद्र का हाथ लिया और सीता की हाथ के ऊपर रखा और पाणिग्रही हुआ, पाणिग्रहण हुआ। उसके बाद चारों अन्य तीनों अन्य भाइयों का और सीता जी की बहनों का सबका विवाह हुआ। राम का विवाह हुआ सीता से और लक्ष्मण का विवाह हुआ उर्मिला से और भरत का विवाह हुआ मांडवी से, शत्रुघ्न का विवाह हुआ श्रुतकीर्ति से। इन चार कन्याओं के साथ हुआ। मांडवी और श्रुतकीर्ति जो है जनक महाराज के भाई के पुत्री हैं। जनक महाराज की दो पुत्रियाँ हैं उर्मिला और सीता जी और उर्मिला। उसके बाद सभी लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वापस अयोध्या। बीच में इस लीला को हमने नहीं कहा, बीच में ये जो धनुष टूट गया है करके खबर मिल गया किसको? परशुराम जी को। परशुराम जी दम बहुत क्रोधित होते हुए आए। उधर बड़ा सुंदर संवाद है, उस क्रोध को देख के लक्ष्मण भी क्रोधित हो गए और रामचंद्र ने दोनों को शांत किया। शांत करने के बाद परशुराम ने कहा, तुम इतना बड़ा शक्तिशाली हो गए, शिव धनुष तोड़ दिया, चलो मैं आपको और धनुष देता हूँ, उसको तोड़ के दिखाओ, तो विष्णु धनुष को देता हूँ। तब रामचंद्र ने कहा ठीक है। तो परशुराम जी जो है आंख बंद करके विष्णु धनुष को आह्वान कर रहे हैं, सारंगा सारंगा बोल रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रहा, विष्णु धनुष आ ही नहीं रहा। तो क्या करे? तो आने आंख दिखा तो वो विष्णु धनुष जो है राम के पास है। अब एकदम परशुराम को मालूम पड़ा कि हजरत में साक्षात विष्णु है। तो राम उस धनुष को लिए हैं और उसके ऊपर बाण भी चलाए। तो क्या करूं अभी मैं, तो एक बार बाण लगा दिया तो कहीं तो छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो परशुराम ने कहा मेरी शक्ति के ऊपर छोड़िए। तब परशुराम के शक्ति के ऊपर राम ने बाण छोड़ा और शक्ति को वो बाण लेके वापस राम ने उसको स्वीकार किया। तो परशुराम रामचंद्र को प्रणाम करके अपनी जो पौरुषवान जो लीलाएं हैं उसको समाप्त करके वो मंदार पर्वत के ऊपर तपस्या करने चले गए। इस प्रकार परशुराम का लीला जो है इस रामचंद्र के साथ में वो समाप्त होता है। उसके बाद भगवान रामचंद्र गए अयोध्या में बड़े उल्लास के साथ, सभी संत आनंद में हैं। और सीता तो प्रिया रामस्या, प्रिया तो सीता रामस्या, ये श्लोकों के द्वारा लव कुश ने ये जो बालकांड का समाप्ति किया। बड़े आनंद का कांड है जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। रामचंद्र विश्वामित्र के साथ अनेकों अनेकों स्त्रों ग्रहण किया, अनेकों अनेकों इतिहासों को सुना और सीता के साथ विवाह हुआ। सीता और राम का भी, राम सीता का भी प्रेम का आदान प्रदान अयोध्या में हो रहा है। अभी हम जाएंगे अयोध्या कांड। तो अयोध्या क्या है? राजधानी है अयोध्या। केवल इस कोई एक एक छोटा सा राज्य का राजधानी नहीं, पूरा राज्य का, पूरा देश का राजधानी है। तो राज्य चलता कैसे है? धर्म के आधार के ऊपर। इसलिए हम अयोध्या कांड में थोड़ा प्रवेश करने के लिए प्रयास करेंगे। उस थोड़ा कठिन कांड है अयोध्या कांड। हम जितना हो सके हमारी बुद्धि के अनुसार, जो भी भगवान कृपा के अनुसार, जो भी हम प्राप्त कर सकते हैं उसको अयोध्या कांड में चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो ध्यान श्लोकों को, अन्य श्लोकों को उच्चारण करके आज अयोध्या कांड में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो पशान्तये। यस्य द्विरथवक्त्रादः पारिषद्यात् परस्ततं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाकं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणी। शृण्वन् रामकथानाथं को न याति परां गतिं यपिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे निलात्मजम् आञ्जनाञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमसन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घसिन्धोसलिलं सलीलं यः शोकवनिं जनकात्मजाया आधाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं कञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलविवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिन्नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुतवेतुल्यं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वामरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणां मधु जन्मव्याधिचराविपत्तिमरणाम् अत्यन्तसोपद्रवं संसारसविहाय गच्छति भवान् विष्णोपदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोत्पत्ततत्र वाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रवीतं दशशिरश्च वदं विशामवध्यं वाल्मीकिगिरिसम्भूत रामसागरगामिनी पुनन्तु भुवनत्पुण्यां रामायणमहानदी श्लोकसाराज्यलक्षं सा सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं वेदवेद्ये वरे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसासीत् साक्षाद् रामायणात्मना वैदेहीस्थितं समुद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्यपुष्पासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रेव चेति प्रपञ्चतसुते तत्त्वं मुनिभ्यं परं वाक्यान्तं भरतादिभिः पवित्रं रामं भजे श्यामलं वामे भूषितप्रचेतसः हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च प्रावृषत् यात्रोल्लभेदे कोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवरात् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसुकर्कूमरुचिरिं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सकलज्ञाय देव्यै च तस्मै जनकात्मये नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रनिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः अत्र विजयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयतु सुग्रीवो राघवेण विपालितः तासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मज नमो रामसहस्रं मे युद्धे प्रतिफलं भवेत् शिलाभेतो बृहस्तः पादैश्च सहस्रशः अर्थयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवादयं च मैथिलीं समुद्रत्यर्थं गमिष्यामि मिथिलं सर्वराक्षसां धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामोदाशरथी यदि पौरुषे चाधिपत्यत्वम् अधियं जैः रावणीम् आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिप्रपच्च वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवन्नों रामायण तो अयोध्याकांड अयोध्याकांड क्या है अयोध्याकांड जो है धर्म प्रदान है जैसे आप देखते हैं बालकांड जो है यज्ञ प्रदान है अयोध्याकांड जो है धर्म प्रदान है एक पुत्र को कैसे रहना चाहिए एक पत्नी को कैसे रहना चाहिए एक पिता को कैसे रहना चाहिए, एक राजा को कैसे रहना चाहिए, एक भाई को कैसे रहना चाहिए, एक माँ को कैसा रहना चाहिए, अनेकों अनेकों जो अपने संबंध होते हैं उसको कैसे अपने निवाहन करना चाहिए, उसका वर्णन आपको ये अयोध्या कांड में प्राप्त होता है। तो ये धर्म को पालन करना करने का मूल उद्देश्य क्या है? धर्म को पालन करने का मूल उद्देश्य यह है साधु संघ की प्राप्ति। ये अयोध्या कांड को संक्षिप्त में है। पूरा अयोध्या कांड जो है दुख से भरा हुआ है, धर्म भी है और दुख भी है, क्योंकि राम वनवास जा रहे हैं, राम को वनवास में भेजा जा रहा है। साथ में कौन आ रहे? सीता भी जा रही है। राम जाए लेकिन सीता साथ में जा रही है, ये वनवास है। और साथ साथ में कौन है? लक्ष्मण भी जा रहा है। और ये देख के अयोध्या वासियों का दुख है। और ये सब धर्म को पालन करने का मूल उद्देश्य, उसका अंत में थोड़ी सी हमको आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, वो क्या है? वो साधु संघ, राम सीता, राम और लक्ष्मण, इन तीनों का सांगत्य प्राप्त हुआ अत्रि ऋषि और अनसुया। अनसुया और अत्रि का सांगत्य प्राप्त हुआ, सीता को अनसुया का उपदेश प्राप्त हुआ। अनसुया ने सीता को वस्त्र प्रदान किया, अनेकों अनेकों सुंदर गहने प्रदान किए, जिसका धारण सीता ने पूरा वनवास में किया। लंका में सीता रही तभी वस्त्र धारण की। तो संक्षिप्त में ये बात कह के हम प्रवेश करेंगे अयोध्या कांड में, क्योंकि जब इस अयोध्या कांड में दुख भरी बातें हैं, लेकिन फिर भी अगर एक बात अगर समझ ले, हमारे जो धर्म पालन करने जो दुख मिलता है, वो दुख कोई ये दुख ऐसा मत सोचे कुछ नष्ट हो जाता है। धर्म को पालन करने में जो हमारी सैक्रिफाइस, जो कष्ट को सहन करना पड़ता है, वो निश्चित रूप में आगे उस सुख का कारण होगा। धर्म की परिभाषा एक कवि ने कहा है कि धर्म वो चीज़ है जो अभी सहन करने, अभी करने, अभी पालन करने के द्वारा आपको ऐसा लगता है कोई लाभ नहीं है, लेकिन उसका लाभ जो है वो बाद में प्राप्त होता है। धर्म में ये निष्ठा जो रखने वाले होते हैं उनको बाद में सुख प्राप्त होता है। नीति जो होता है ना, नीति में क्या होता है, आपको भी सुख मिले और अभी मुझे भी सुख मिले, उसको नीति कहा जाता है। जो नीति को भी पालन नहीं करता है वो सोचता है कि केवल मैं ही सुखी हो जाऊं और कोई दूसरा सुखी ना हो जाए, ये नीति होता है, या ये दुष्ट व्यक्ति का होता है, मैं अभी सुखी हो जाऊंगा और दूसरों को अभी दुख दूंगा, तो वैसा व्यक्ति जो है वो बाद में दुखी हो जाता है। नीतिवान व्यक्ति को क्या होता है, अभी आप भी सुखी हो जाओ, मैं भी सुखी हो जाऊंगा, लेकिन बाद में क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। लेकिन धर्म निष्ठा जिसके पास है वो दूसरों का दुख मिटाने के लिए वो अपना दुख सहन करता है, धर्म पालन करके अपना दुख सहन करता है, लेकिन अंत में क्या होगा, अंत में उनको अच्छा ही होगा। अगर इस जगत में कोई अच्छा ही कुछ है वो क्या है, साधु संघ। उनको रामचंद्र को साधु संघ प्राप्त हुआ, अत्रि मुनि के द्वारा अत्रि मुनि का संघ प्राप्त हुआ, और सीता जी को भी साधु संघ प्राप्त हुआ, किसका, अनसूय का संघ प्राप्त हुआ, तो उसके द्वारा उनको आशीर्वाद मिला। अभी आगे आचार्य ने कहा अनसूया अत्रि का सांगत्य प्राप्त करने की वजह से रामचंद्र और सीता को ऐसा आशीर्वाद मिला ताकि सारा अरण्य में घूम घूम के वापस अयोध्या आने तक इतने सारे कष्टों को सहन किए, लेकिन फिर भी उनका कभी भी दुख का अनुभूति नहीं हुआ, कभी उनका पराजय नहीं हुआ, हमेशा जय हुए। रामचंद्र इस बात को आगे कहते हैं कि हमको ये जो सांगत्य प्राप्त हुआ है अत्रि और अनसुया का, उसी के बल के वजह से रावण के ऊपर हमने जीत पाया, और सीता जी रावण के साथ में 10 महीने तक वही साड़ी पहन के रही जो अनसुया ने दिया था। और किस प्रकार की साड़ी थी वो? ऐसी साड़ी अनसुया ने सीता को प्रदान किया वो कभी खराब नहीं होता है, और कभी वो फोल्ड रिंकल्स नहीं होता उसके ऊपर, और कभी मैला नहीं होता है। ऐसा एक विशेष साड़ी को अनसुया ने प्रदान किया सीता को, आचार्यों ने कहा है ये किस प्रकार है, ये है क्या, ये साड़ी है क्या, वो है आशीर्वाद। जब बड़ों की आशीर्वाद रहता है, संतों की आशीर्वाद रहता है, कितना भी भयानक सा दुख क्यों ना हो, संसारिक भी दुख क्यों ना हो, कितना भी भयानक संसारिक दुख क्यों ना हो, वो दुख को हम निश्चित रूप में पार कर लेंगे। अभी पहले बालकांड में विश्वामित्र की कृपा से सीता राम का मिलन हुआ, मिलन हुआ, संसार में प्रवेश किए। वैसे सीताराम तो संसार में नहीं है, एक मनुष्य का एक रूप धारण करके एक लीला कर रहे हैं। इसलिए जब कोई विवाहित हो जाता है तो विवाहित होने के बाद भी साधुओं का रक्षा चाहिए, नहीं तो संसार को पार नहीं कर सकते, गृहस्थ जीवन नामक संसार को पार नहीं कर सकते। क्योंकि विवाह करना जो है वह आनंद में कर लेते हैं, उसके बाद जो झेलना होता है ना, बड़ा दुख का सागर है वो, उसको कैसे पार कर सकते हैं, जब साधुओं का संगति होता है। वो कब प्राप्त होता है, जब धर्म निष्ठा को पालन करोगे। इसलिए पूरा अयोध्या कांड जो है धर्म की बातें हो रही है, पत्नी को किस प्रकार रहना चाहिए, एक स्त्री को किस प्रकार रहना चाहिए, पुत्र को किस प्रकार रहना चाहिए, धर्म की बातें हैं। तो ये अयोध्या कांड का शुरुआत हुआ। कैसे शुरुआत हुआ, बड़ा एक अद्भुत श्लोक से अयोध्या कांड का शुरुआत होता है, वो है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न की महिमा का वर्णन हो रहा है, क्या वर्णन, कैसे वर्णन हो रहा है, गच्छता मातुलम कुलम भरतेन तदानघा शत्रुघ्नो नित्र शत्रुघ्नो नीता प्रीति पुरस्कृतः। तो ये पहला श्लोक है इसका, अयोध्या कांड का। इसमें कहा गया है गच्छता मातुलम कुलम, मातुलम कुलम पिछले भी वर्णन हुआ है, किस प्रकार अयोध्या में सब आने के बाद मातुलम कुलम कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, कैकेयी के जो भाई ने कहा कि अभी थोड़ी देर भरत को मेरे साथ भेजो, तो कैकेयी तुरंत मान लिया, दशरथ ने मान लिया। तो भरत जा रहा था मातुलम कुलम, मामा के पास जा रहा था। तो जब जा रहा था साथ में, पीछे पीछे शत्रुघ्न भागते आया, शत्रुघ्नो नित्र शत्रुघ्नो नीता प्रीति पुरस्कृतम, प्रीति पुरस्कृतम बड़े प्रेम से ऐसा नहीं कहा गया है कि जबरदस्ती, प्रीति पुरस्कृतम। पहले हमने कह चुके हैं कि लक्ष्मण रामचंद्र जहां है लक्ष्मण जाता है, जहां भरत है उसके पीछे पीछे शत्रुघ्न जाता है। बड़ों का आदर करना सबसे पहले श्लोक में वर्णन किया गया है, जहां बड़ा भाई जाता है उसके साथ में मुझे जाना है बस, और को आगे पीछे नहीं देखना है। और वो क्या वर्णन किया गया है, शत्रुघ्नो नित्र शत्रुघ्न, शत्रुघ्न का वर्णन हुआ है नित्य शत्रुघ्न। ये नित्य शत्रुघ्न का दो अर्थ है, एक है जो नित्य हमेशा शत्रुओं को मारने वाला, दूसरा अर्थ ये है नित्य शत्रुओं को मारने वाला। देखिए नित्य शत्रु कौन है, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, इसका अर्थ क्या है, जो हमारे नित्य शत्रु कौन है, हमारे इंद्रियां, हमारा मन ही नित्य शत्रु है। और शत्रुघ्न इन नित्य शत्रुओं को, इंद्रियों को, मन को जीत कर जीतने वाला, वश में रखने वाला शत्रुघ्न है। वो कैसे कर पाता है, जब भरत की सेवा होता है। अब देखिए आप भगवान का कितना भी सेवा कर लो, हमारी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं हो सकता है। जब तक भक्त का सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारे इंद्रियां नियंत्रण में नहीं होंगे। अब देखिए पिछले दो दिनों से बार बार इस बात को कह रहे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम को राम क्यों कहा गया है, क्योंकि रमयताम वरहा, जो आनंद देने वालों में सर्वश्रेष्ठ, इसलिए राम रमयताम वरहा। और लक्ष्मण को लक्ष्मण क्यों कहा गया है, लक्ष्मण हा लक्ष्मीवर्धन, जो लक्ष्मी श्रेय को, लक्ष्मी को वर्धन करने वाला है। तो लक्ष्मी का अर्थ क्या है भाई, इधर लक्ष्मण के पास है क्या, जहां राम जाते हो पीछे चले जाते हैं। अभी हम अयोध्या कांड में देते हैं राम लक्ष्मण जो है सब सेवक के रूप में, मीनियल सर्वेंट के रूप में राम के साथ में जा रहे, लक्ष्मीवर्धन कैसे हुआ, क्योंकि जिसके पास राम की भक्ति है वही लक्ष्मण है, वही लक्ष्मीवर्धन है, वही श्रीमान है। जब गजेंद्र पूरा हजारों साल तक उन्होंने युद्ध किया मगरमच्छ के साथ, लेकिन जब उन्होंने पूरा युद्ध करके थक के जब भगवान को एक कमल अर्पण किया गजेंद्र ने, उधर एक ऋषि वर्णन करते हैं गजेंद्र श्रीमान गजेंद्र, श्रीमान शब्द इस्तेमाल किया गया है। अरे ये पूरा 1000 साल तक सब कुछ सारा चीज टूट गया उनका, गजेंद्र का सब परिवार वाले चले गए, पता नहीं राज्य क्या हुआ, ये अकेला बचा हुआ सारा शक्ति क्षीण हो गया है गजेंद्र का। अभी वो श्रीमान कैसे हैं? क्योंकि अभी कमल अर्पण किया ना, भक्ति उदय हुआ ना, तो श्रीमान हुआ। इतना ही नहीं, जब लंका से आकाश मार्ग से उड़ते हुए जब आए विभीषण, तो रामचंद्र विभीषण को पुकारा, श्रीमान करके पुकारा। अब देखिए विभीषण क्या करके आए, राज्य त्याग किया, परिवार को त्याग किया, एकदम बिल्कुल अकेला, जेब में चिल्लर भी नहीं होगा, उस अवस्था में आया। रामचंद्र क्या कहते? श्रीमान। क्यों? भक्ति जिसके पास होता है वही श्रीमान। लक्ष्मण हा लक्ष्मीवर्धन हा, तीसरे कौन है? भरत। भरत कौन है? भरणात भरत। जो रामचंद्र का आज्ञा का जो भार अपने सर के उठाता है, अपना भार खुद उठाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन दूसरे का भार उठाना, और कैसे उठाना, जिस प्रकार अपना हो उस प्रकार उठाना, ये भरणात भरत। और चौथे कौन है? शत्रुघ्न। शत्रुघ्नो नित्र शत्रुघ्नो, भगवत सेवा, भागवत की सेवा करके उनके पास ऐसा सामर्थ्य हुआ कि वो नित्य शत्रुघ्न, अपने जो नित्य शत्रु है इंद्रियों को पर काबू कर पाए। अभी पहले दो सर्ग अयोध्या कांड के पूरा भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? राम का गुणों का वर्णन करने भरा हुआ है। पहला बालकांड का पहला सर्ग है, उसके अंदर पूरा राम के गुणों से वर्णन भरा हुआ है। लेकिन ये अयोध्या कांड का जो दो सर्ग में जो भगवान रामचंद्र के गुणों का जो वर्णन हुआ है ना, ऐसा कहा गया ये दो सर्ग को कोई भी पढ़ता है तो पता नहीं वो गुणवान हो जाता है कि नहीं, उसका पुत्र तो निश्चित रूप में गुणवान हो जाएगा। अभी इधर वाल्मीकि जी रामचंद्र के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो बात ऐसा है, प्रसंग ऐसा है कि दशरथ महाराज अभी सारे सब सभा में बैठे हुए हैं और सभा को बता रहे हैं। दूसरा सर्ग की बात है, पहला सर्ग में गुणों का वर्णन थोड़ा बाद में करेंगे, तो दूसरा सर्ग में दशरथ महाराज साहब को बिठा के पूछ रहे, बता रहे हैं, देखो अभी मैं वृद्ध हो रहा हूँ, तो वृद्ध हो रहा हूँ तो क्या करें, रामचंद्र बड़े गुणवान हैं, मेरा ज्येष्ठ पुत्र है और उनके अंदर अनेकों अनेकों दिव्य अच्छे अच्छे गुण हैं, और मैं चाहता हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ कि रामचंद्र को अभी राजा बनाया जाए, तो इसके विषय में आपका राय क्या है? क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय के ऊपर जो न्यूट्रल व्यक्ति होता है ना, जो पक्षपात नहीं करता है, वैसे लोगों की अनुमति की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप नहीं सलाह दोगे, अपने मनमानी करूँगा, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकते हैं। आप बड़े सब विचारवान हो, आप मंत्री हो, ब्राह्मण हो, विद्वान हो, आपका राय, तब हो सकता है कि मेरा राय गलत हो, आप खुलेआम बोल सकते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो निश्चित रूप में बता दीजिए। तो दशरथ महाराज ने इस बात को सभी सभा में रखा। जैसे सभा में इस बात को प्रस्तुत किया, तो कैसा सभा रिएक्ट किया, तो उसका वर्णन करते वाल्मीकि जी ने, इति भ्रुवंतम मुदिता। जैसे दशरथ ने इस बात को सबके सामने प्रस्तुत किया, मुदिता सब एकदम खुश हो गए। तो प्रत्यानंद नृपानुपाम, जितने भी लोग बैठे थे, ऐसा नहीं कि एक दो, तो सभा में जितने भी राजा बैठे थे, मंत्री बैठे थे, ब्राह्मण बैठे थे, सब लोग इतना आनंदित हो गए। कैसे आनंद हुआ उनका? जब कोई भरिहना, मतलब कोयल एकदम बारिश का मौसम में कू कू करके आवाज करता है, और वो आवाज कैसा है? महामेघम नर्दतान इवा, नाचते हुए वो कोयल कोयल नहीं, पीकॉक को क्या बोलेंगे, मोर, मोर नाचते हुए एकदम बिल्कुल आनंद से जोर जोर से पुकारता है वृंदावन। जब गए होंगे तो आप कोयल का आवाज, कोयल नहीं, मोर का आवाज जो है सुनाई पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर तक सुनाई पड़ता है और सभी लोग आनंद से गर्जन करने, कैसे गर्जन करने लगे, वर्णन है कि जनेर इन लोगों का जो आनंद कैसा था, विमानम कंपयन्निव, तो पूरा जो महल है उनका विमान होता ऊपर रहने वाला जो गोपुरम होता है उसको विमान कहा जाता है, कंपयन्निव पूरा कंपन होने का, स्तुग्धो रुनिदा निनादो, उनका निनाद इतना पूरा जोर जोर से कंपन हुआ। कंपन होके आगे उन लोगों ने इस प्रकार दशरथ को कहा, क्या कहा, किस प्रकार दशरथ कहा क्या कहा दशरथ को, अनेक वर्ष सहस्रेण, अनेक वर्ष सहस्रेण, हजारों साल जो है आप जीते रहो और आपने एकदम बिल्कुल बराबर निर्णय लिया। इस बात को प्रस्तुत करते हुए उन लोगों ने कहा, इच्छामो हि महाबाहुम रघुवीर महाबलः, तो सभी लोग एक साथ में क्या कहा, इच्छामहो इच्छामहो इच्छामहो, सब लोगों ने कहा, देखिए उत्साह के साथ कह रहे सब लोग, इच्छामहो महाबाहुम रघुवीर महाबलः। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि रामचंद्र अच्छा है, आपने जो पूरा सही बात कहा, आप रामचंद्र को राजा बना सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा। सारे लोग एक शब्द में घोषणा करते हुए, इच्छामो महाबाहुम रघुवीर महाबलः गजेन महाताम यातम, हम बड़े शीघ्रता से इंतजार कर रहे थे, अभी नहीं पहले से इंतजार कर रहे थे, किसका इंतजार कर रहे थे, गजेन महातायांतम, महातायांतम, एक महान गजा, गज मतलब हाथी के ऊपर रामचंद्र जी बैठे हो और बैठ के कैसे बैठे हो, छत्रवृतानः, सफेद छत्र, छाती जो है छत्र जो है उनकी साथ पे लगा हुआ है, यानी राजा के पास जो रहता है ना सफेद छाता रहता है, तो हम पहले से इसका इंतजार कर रहे हैं, इच्छा महो। और जैसे ही लोगों ने इस प्रकार कहा तो दशरथ महाराज थोड़ा सा घबरा गए, खुश भी हो गए लेकिन घबरा भी गए, घबराते हुए पूछा, शुत्वेन वचनम यन्ये राघवम परिमिच्छन्ति, राजन संशयेन, संशय करने लगे, असली बात क्या है मैं जानना चाहता हूँ, ये बड़े उत्साह के साथ सब लोग बोल रहे हैं कि इच्छामो इच्छामो, हम इच्छा ही इच्छा करते हैं। तब उन्हें पूछा, कतम नुमति धर्मेण, ने पूछा कि क्या है आप बड़े उत्साह के साथ इच्छामो, हम बोलते हैं कि राम ही राजा बनना चाहिए, मैं इतने साल से राज्य कर रहा हूँ, 60,000 साल से राज्य कर रहा हूँ, कम से कम एक बार तो बोलते कि आप बहुत अच्छे राजा है, कम से कम 5-10 दिन रहिए, बाद में राम को राजा बनाए, इतना तो बोलते हैं, कहीं क्या मैं कहीं आपको हानि किया क्या, कदम तुम्हें धर्मेण, धर्म को पालन करने में कोई कुछ कमी तो हुआ है क्या, मैं 60,000 साल राज्य करते हुए, अगर मान लो कोई आप रोज एकदम अच्छे से कुछ चीज़ खा रहे हो, अचानक से कोई एक सुंदर सा आइटम आ जाता है खाने के लिए, तो सबको बोले ये दो, वो कुक जो रोज़ पका रहे हैं वो सोचेगा कुछ ये क्या हो क्या रहा है, मैं कुछ गलत पकाता था क्या, ठीक नहीं था क्या, वो सोचेगा। उसी प्रकार इधर दशरथ सबको पूछ रहे, युवराजम महात्मजम, तो युवराज जो है बड़ा महात्मा है, मैं जानता हूँ बड़े अच्छे व्यक्ति है रामचंद्र और सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन कम से कम थोड़ा कुछ बोल देते कि 5-10 दिन के बाद करो, एक साल के बाद, अभी तक चलाओ, बाद में रामचंद्र बच्चा है, एक तो कहते, एक व्यक्ति तो कहता। तब सारे लोगों ने कहा, हे दशरथ, आपकी परिपालन में कोई दोष नहीं है, दोष अगर कुछ है तो रामचंद्र जी गुणों में है, क्या करें, उनके पास इतने सुंदर सुंदर अद्भुत अद्भुत गुण हैं, तो ये एक स्मरण करने मात्र से ऐसा लगता है कि राम ही राजा होना चाहिए, समस्या जो है आपकी परिपालन में नहीं है, हम हमारे अंदर जो आवेश जो है ना वो किसकी वजह से है, रामचंद्र जी का गुणों का स्मरण करने की वजह से है। वो दोष रामचंद्र का गुण है, हम क्या करें बताओ। अभी इस बात को कहे कि सारे जितने भी राजा हैं, दशरथ चक्रवर्ती हैं, राजा है, मंत्री है, रामचंद्र के गुणों को वर्णन करने लगे। उन गुणों में कुछ अंशों को मात्र चर्चा करेंगे। एक गुण इस प्रकार है, सचनित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वान्तु भाषते। प्रशांतात्मा हमेशा शांत रहते थे भगवान रामचंद्र, और मृदुपूर्वान्तु भाषते। और कैसे उनकी भाषा होती थी, मृदु, बहुत एकदम मृदु भाषा, एकदम सरल, सॉफ्ट स्पोकन। और कोई व्यक्ति उनसे बहुत उच्च भाषा से बात करता है, रोष से बात करता है, उच्चमानोपि पुरुषम, ऊंची आवाज से अगर कोई बोलता है, नोत्तरम प्रतिपद्यते, न उत्तरम प्रतिपद्यते, ऊंची भाषा में, ऊंची शब्दों में या बड़े कठोर शब्दों में कभी भी उत्तर नहीं देते थे कोई भी हो। अगर कोई उनको कुछ अपशब्द भी बोले, भगवान रामचंद्र का सबसे पहला भाषा, उनकी वाणी किस प्रकार है, मृदुपूर्वम तो भाषते। अभी आगे उनका और गुणों का वर्णन आ रहा है, ये बड़ा अद्भुत गुण है। कतंचित उपकारेण उनकी कृतज्ञता। ये लाइन है कि ये जो गुणों का वर्णन है, सबसे पहला प्रभुपाद जी भी कहते हैं भगवद्गीता के तात्पर्य में एक जगह कहते हैं कि स्पीच इज द क्वालिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए मैन। कोई भी व्यक्ति हो, सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ गुण है उनका वाक्य, वो मृदु होना चाहिए वाक्य। और उसके बाद कृतज्ञता, कतंचित मतलब क्या है, थोड़ी सी भी, कतंचित उपकारेण, एक भी उपकार कर लेता करता है, थोड़ा सा भी करता है तो क्या, हाँ, उपकारेण कृतेनैव केन तुष्यति, केन तुष्यति, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। एक भी उपकार तेन तुष्यति, हमेशा के लिए याद रखते हैं। दूसरा बात क्या है, नस्मात् अकारण, अगर मान लो कि कोई एक अपशब्द बोलता है, शतमपि अपकाराणाम। अभी देखिए, उपकारम कतंचित उपकारेण कृतेन, कतंचित उपकारेण, उपकारण का अर्थ है कि एक उपकार करने के बाद भी वो हमेशा उसको याद रखेंगे। और दूसरी बात कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति अपकाराणाम शतमपि, अपकाराणाम मतलब क्या है, अनेकों अपकार करता है, शतमपि मतलब सौ के ऊपर हजारों अपकार करता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको विस्मरति मतलब क्या है, वो कभी भी स्मरण नहीं करते, याद ही नहीं रखते। मान लो व्यक्ति सामने आता है, बहुत अपकार किया, बहुत सारा निंदा किया, बहुत उनको मारने तक भी प्रयास किया है, बहुत पॉलिटिक्स किया, वो सामने भी आते हैं ना, तो कोई व्यक्ति बोलता है उसको, देखो ये व्यक्ति है ना, आपको ऐसा कहा था, अच्छा ऐसा है क्या, मुझे नहीं मालूम, न स्मरत ही वो भूल जाते। ये भगवान रामचंद्र का विशेषता है। बाद में कैसे है उनका दया का वर्णन ऐसा आता है कि इतना उनका दया है कि अगर कोई दुखी हो जाता है, वृषम दुखम अनुभवती, किसी का दुख सहन नहीं कर सकते भगवान रामचंद्र। और जब किसी का दुख देखते हैं तो रामचंद्र कैसे अनुभव करते हैं उस दुख को, उसको कैसे अनुभव करते हैं, वो व्यक्ति जितना दुख को अनुभव कर रहा है उससे ज्यादा दुख अनुभव करते हैं, ज्यादा दुख को अनुभव करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो दुख मिटने के बाद, दूसरा व्यक्ति का दुख मिटने के बाद उस दुख को भूल जाते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। भगवान रामचंद्र उस दुख मिट गया उसका, वो कब का दुख था, लेकिन अभी भी वो दुख को स्मरण करते हुए उस दुख को याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? उदाहरण दिया गया, माँ का उदाहरण दिया गया है। माँ जब बच्चे छोटे होते ना, उस बच्चे को ऐसा खेलने के लिए कुछ दे देती है माँ, और अपने पड़ोसन से कोई बात कर रही है, समझ लीजिए। वो बच्चा खेलते खेलते क्या होता है कि वो थोड़ी सी ऊंची जगह आया, खेलते खेलते उधर से नीचे जगह पर गिर पड़ा। गिरने के बाद एकदम बिल्कुल चोट लगा, रो रहा है बच्चा। तुरंत माँ जो है उस बच्चे को उठाती है, उठा के वो अपने आप को दोषी दिलाती है, मैं किस प्रकार की पापी माँ हूँ, देखो बच्चे को देखभाल नहीं किया, और रोना शुरू करती है। और वो बच्चा रोना बंद कर दिया, लेकिन माँ अभी रो रही है। देखिए बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद बड़ा मिलिट्री ऑफिसर बढ़ गया, बड़ा हट्टा कट्टा हो गया, और घर में अपना बड़ा सूट बूट पहन के चल रहा है। तो माँ उस बच्चे को देख के, उसको तो बच्चा ही है ना, बोलती है बच्चा संभाल के चलना। अरे अभी वो बच्चा नहीं रहा है, नहीं याद है ना बचपन में तुम गिरा था, रोया था, उसको स्मरण करती है अभी। माँ का स्वभाव होता है, माँ जैसा दूसरों को दुख देख के, बच्चे का दुख, बच्चे दुखी होता है तो माँ उससे ज्यादा दुख को मान भो करती है, उसी प्रकार राम दुखी होते हैं हमेशा के लिए। वो दुख दूर होने के बाद दुखी होते हैं, उनका स्वभाव है रामचंद्र का। ऐसे ही नहीं राम का बात अभी भी हम करते हैं, अभी भी लोग रामराज के बारे में क्यों बात करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के दिव्य गुणों की उपस्थिति होने की वजह से। आगे थोड़ी सी संतुष्टि, पितेव परितुष्यति, अगर कोई खुश हो जाता है, सुखी हो जाता है, उसको देख के रामचंद्र कैसे अनुभव करते हैं, पितेव परितुष्यति। पिताजी का वर्णन करेंगे, एक पिता है गरीब परिवार के हैं, और पिताजी बच्चे को अच्छी तरह देखभाल करते हैं, उधार लिया, बहुत पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद बड़ा हो गया बच्चा, इंजीनियर हो गया और अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने के बाद उधर ही किसी विवाह कर लिया, बड़े आनंद से अनुभव कर रहा है, बड़े सुखी है उधर। इधर पिताजी बहुत गरीब है, उनको वृद्धावस्था भी आ गया है, शरीर भी ठीक नहीं है, लेकिन उधर से उनका लड़का लेटर लिखता है कभी कभी, मैं ठीक हूँ करके। उसके घर में कोई आता है तो ये पिताजी से पूछता है आपका लड़का कैसे है? अरे हम, मेरा लड़का एकदम आनंद में है। आनंद का अनुभव या सुख का अनुभव उसका उसका लड़का कर रहा है कहाँ, अमेरिका में, लेकिन उससे ज्यादा आनंद पिताजी का है। अवस्था क्या है अभी? बहुत दुख का अवस्था है, लेकिन दूसरों का जो सुख देख के अपना दुख को भूल जाना, ये प्रेम कहा गया है। इस प्रकार का स्वभाव है भगवान रामचंद्र का। देखिए ये केवल सुनने को भी मिल जाए ना आजकल की दुनिया में, केवल सुनने की मिल जाए, ऐसे व्यक्तियों को खोजना तो बात छोड़िए, केवल सुनने की भी मिल जाए बड़ा दुर्लभ है। ये रामचंद्र का स्वभाव है। ऐसे ऐसे दिव्य अमूल्य गुणों का एक एक राजा वर्णन कर रहे हैं रामचंद्र में, इस प्रकार है, इस प्रकार है। तो आगे और वर्णन आता है, मितभाषी चा, केवल मितभाषी नहीं भगवान राम, स्मितभाषी नहीं, वो कैसे हैं, मितभाषी है। देखिए बुद्धिमान मधुरभाषी पूर्वभाषी प्रियवदहा, बुद्धिमान भगवान रामचंद्र बड़े बुद्धिमान है। बुद्धिमान होने के साथ साथ में मधुराभाषी, उनका भाषा जो एकदम मधुर, जैसे शक्कर उगलता हो उस प्रकार की भाषा है उनका। और पूर्वभाषी बहुत महत्वपूर्ण गुण है, थोड़ा सा विचार करना जरूरी है। अभी देखिए मान लो कि आप किसी एक अनजान व्यक्ति आपके पास आया, कहीं बैठा है, समझ लो कहीं आया है, तो क्या करोगे, उनका मुँह कहीं रहेगा, उनका आपका मुँह कहीं रहेगा। कभी 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 किसी घर में जाना होता है ना, वो अभी तो लिफ्ट से जाना पड़ता है वो के घर में, तो लिफ्ट में जाओ तो अंदर जाओ, कोई और एक व्यक्ति समझ लो ऐसे देखता रहेगा, मुड़ के भी नहीं देखेगा, पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मनी निकाल रहा है, कभी वैसा अनुभव होता है। तभी हमको आगे उनको देख के हंसना पड़ता, हरे कृष्ण बोलना पड़ता है। तो क्यों ये अहंकार की वजह से कोई आके मेरा इंट्रोडक्शन दे, तभी बाहर बात करता हूं। तो रामचंद्र का ऐसा नहीं था, किसी को भी देखेंगे ना, जैसे बच्चा भाग भाग के आता है ना पापा पापा करके, उसी प्रकार पूर्वभाषी च राघव, पूर्वभाषी, पूर्व मतलब पहले वही बात करते हैं, और कैसे बात करते हैं, स्मितभाषी, उनको देख के हंसते हैं और पूछते हैं, उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं किसी का, कोई अपना स्टेटस आर्टिफिशियली नहीं बनाते हैं। देखिए जो आर्टिफिशियली किसी को स्टेटस बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास है तो गुणों की वजह से होता है, जबरदस्ती बना के रखने से नहीं होता है। रामचंद्र इस प्रकार के मृदु स्वभाव के महाशिष राघव और वीर्यवान, साथ साथ में वीर्यवान। अब देखिए कोई सोचे अपनी वीरता को बना के रखने के लिए, अपनी गंभीरता को बना के रखने, मैं पहले बात नहीं करूंगा, उनको उनको आके मुझसे मिलो। राजा है भगवान रामचंद्र, लेकिन उनका स्वभाव देखिए, पूर्वभाषी भाषी च मिथभाषी च, अनेकों अनेकों तरीके से इनके दिव्य गुणों का वर्णन हुआ है। अभी सारे लोग इच्छा मोह कहा कि रामचंद्र का होना चाहिए, रामचंद्र ही राजा होना चाहिए। ये प्रश्न आता है, दशरथ महाराज ने इस प्रकार का प्रस्ताव क्यों रखा? प्रस्ताव इसलिए रखा कि दशरथ महाराज को मालूम है कि दो समस्याएं हैं उनका। एक समस्या है उन्हें कन्या शुल्क किया था। क्या है कन्या शुल्क का अर्थ क्या है? जब कैकेयी से विवाह हुआ था उस समय उन्होंने लिख के दिया था कैकेयी को, कैकेयी उनके पिताजी को, कैकेयी के पिताजी को लिख के दिया था। क्या लिख के दिया उन्होंने? आपके जो कन्या के द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र उसको राजा बनाऊंगा, जो कन्या शुल्क कहा जाता है। दूसरी बात क्या है, जब दशरथ का युद्ध चल रहा था, स्वर्ग पे निमंत्रण दिया था असुरों के साथ युद्ध करने के लिए, बड़ा धुआंधाम युद्ध चल रहा था, उस समय क्या हुआ, कैकेयी उस रथ में उनके साथ में थी, इतने वीर्यवान थी कैकेयी, उनका पहिया, रथ का पहिया टूट गया था, और कैकेयी ने उस रथ का पहिया को दूसरे पहिया के साथ अपने हाथ से जोड़ के रखी थी, इतनी वीर्यवान थी, इतनी शक्तिशाली थी। और उससे बड़े प्रसन्न होके दशरथ महाराज ने कहा था, दशरथ ने कहा कैकेयी को, तुमको दो वरदान दूंगा। कैकेयी ने कहा, जब जरूरत पड़ेगा तब मांगूंगी। अभी दशरथ को मालूम है, मैंने कहा था कैकेयी के पुत्र को राजा बनाऊंगा। दशरथ ने सोचा, मैंने ये जो वाक्य कहा वो सत्य है, भरत को राजा बनाना है, मैंने ये वाक्य कहा ये सत्य है। अभी उस सत्य को क्या करना है, मुझे कवर करना है, सत्य को छुपाना है। और कैसे छुपाऊंगा, मैं धर्म के द्वारा छुपाऊंगा। धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या होता है? सारे राजाओं की सहमति के साथ जो निर्णय लिया जाता है उसको धर्म कहा जाता है। राजा नहीं कि मैंने जो बोल दिया वही शासन है, सारे ब्राह्मणों का, सारे राजाओं का, मंत्रियों का सहमति के साथ अगर जो निर्णय लिया जाता है वो राजा का धर्म है। तो वो धर्म के द्वारा दशरथ ने सत्य को छुपाने का प्रयास किया, सत्य को ढकने का प्रयास किया। देखिए सत्य को ढकने के लिए अगर आप कुछ भी प्रयास करोगे, किसी भी प्रकार के प्रयास करोगे, आपको दुख का अनुभव करना पड़ेगा। आपको स्टोरी तो मालूम है, इसलिए दूसरी ओर बताऊंगा। कैकेयी, तो कैकेयी ने क्या किया, वो सत्य के द्वारा धर्म को ढकने का प्रयास किया। एक ओर धर्म है, दूसरी ओर सत्य है। दशरथ ने सत्य के द्वारा, धर्म के द्वारा सत्य को नीचा किया, सत्य को छुपाने का प्रयास किया, और कैकेयी ने सत्य के द्वारा धर्म को छुपाने के लिए प्रयास किया। यही दो समस्याएं समाज में। लेकिन जो विद्वान होता है ना, वो सत्य और धर्म को साथ में लेके चलता है, सत्य और धर्म को, धर्म का समन्वय करके चलता है। ये बुद्धिमता का अर्थ है। बुद्धिमता है नहीं मेरा धर्म इसलिए करता हूं, एक गधा भी अपना धर्म को पालन करता है कि नहीं? नहीं, सत्य ही सत्य है, मजे थे, धर्म को छोड़ो, खाली सत्य हम पालन करेंगे, ये भी मूर्खता है। धर्म और सत्य का समन्वय करना, ये वास्तविक बुद्धिमत्ता है। अभी इन दोनों का विपरीत बुद्धि है। एक दशा क्या धर्म के द्वारा सत्य को छुपाओ, यार कैकेयी ने सोचा कि नहीं, सत्य जो है सत्यम धर्म प्रतिष्ठम ते, सत्य के द्वारा ही धर्म प्रतिष्ठा होती है, ऐसा कैकेयी ने कहा। अभी इन दोनों के बीच में विरोधाभास चल रहा है, अभी क्या करें। कैकेयी ने शुरू किया वो मंत्रा का स्टोरी, सब आपको मालूम है किस प्रकार मंत्रा ने कैकेयी का दिमाग खराब किया और कैकेयी जाके कोप गृह में सो गई। और बस अगले से अगले दिन मुहूर्त निकला है किसका, रामचंद्र का पट्टाभिषेक होने वाला है। तो दशरथ को खबर मिला कैकेयी जो है कोप गृह में है, तो दशरथ गए तो कैकेयी से बात करके कैकेयी ने अपना प्रस्ताव रखा, आपने वरदान दिया था अभी वो दो वरदान दीजिए। सब मालूम है क्या वरदान है, उस श्लोकों में आएगा तब चर्चा करेंगे। तो दशरथ एकदम उनका हालत खराब हो गया। अस्तित्व में कुछ ही एक या दो दिन पहले की बात है, दशरथ ने रामचंद्र को बुलाया था, उन्होंने कहा रामचंद्र को तुमको राजा बनना चाहिए। तो रामचंद्र जो है वो बात सुन के कोई भी रिएक्शन नहीं है, ठीक है। और वापस दशरथ ने रामचंद्र को अकेले में बुलाया, बुला के कहा अभी देखो तुमको राजा बनना है, लेकिन जितना हो सके उतना जल्दी राज्य पट्टाभिषेक करना चाहता हूँ। दशरथ अभी भरत नहीं है, ये मत बोलो भरत आने दो, भरत जब नहीं है, क्योंकि पहले कहा गया था भरत और शत्रु गए मामा के घर में। दशरथ ने सोचा ये उचित समय है, रामचंद्र को राजा बना दूं, अभी राजा बनने के बाद तो मेरा कर्तव्य समाप्त हो जाएगा। ऐसा सोचते हैं रामचंद्र को कहा कि अभी देखो समय ऐसा है, मैं कभी भी मर सकता हूं, ये मत सोचो कि इधर भरत नहीं है, भरत का इंतजार मत करो, अभी तुम्हारा पट्टाभिषेक हो जाए। राम ने कहा सही है, ठीक है। सीधा उस बात को सुन के राम कहां गया, सीधा लक्ष्मण के पास गया। लक्ष्मण के पास जाकर राम ने क्या कहा देखिए, हे लक्ष्मण तुम्हारी तुम मेरी अंतरात्मा हो, अंतरात्मा होने के नाते तुम राजा हो भी, मैंने पिताजी ने मुझे बुलाया, बुला के कहा कि तुम राजा बनो, तो मैंने सोचा ये सोचा कि तुमको राजा बनना है, तुम्हारे लिए मैंने उनके सामने हां करके आया हूं। तो लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गया और खुशी से जाके कौशल्या को बुलाया, कौशल्या आनंद में ही और सारे राज्य में पूरा अयोध्या में बात फैल गया, किसी को एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं था, सारे अयोध्या में खुशी मना रहे हैं सब लोग। अब इधर कैकेयी ने चाल चलाया, तो कैकेयी ने चाल चलाया, रामचंद्र गए किसके पास, दशरथ के साथ, दशरथ के पास में गए। ये बात कब हुआ, बस एक दिन पहले की बात है। अगले दिन सुबह 10 बजे सब तैयारी हो रही है, गए दशरथ से मिलने गए और आशीर्वाद देने गए, क्योंकि अगले दिन उनका पट्टाभिषेक है। रामचंद्र जैसे दशरथ के पास गए, दशरथ का मुंह खिन्न था और कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ बात ही नहीं कर रहे। अगर मान लो आप किसी के पास जाओगे, वो व्यक्ति आपसे बात नहीं करता है, तो क्या सोचोगे, क्या आप नाराज हो आपसे। बहुत सारे बातों को रामचंद्र ने कहा दशरथ को, लेकिन दशरथ बात ही नहीं कर रहे हैं, उनका मुंह झुका हुआ है। तब कैकेयी राम से कहती है, जब राम ने कहा दशरथ को कि आप मेरे से बहुत नाराज हैं, और कैकेयी को और देख के राम ने कहा कि क्या मेरी पिताजी मेरे से नाराज हैं, किस बात के ऊपर आप बताओ तो सही। तब कैकेयी कहती है न राजा कुबितो रामा, हे राम ये राजा आपका राजा है ना दशरथ आपसे क्रोधित नहीं है, व्यसनम नास्यम किंचना, व्यसनम नास्यम किंचना। अस्तित्व में ये जो राजा है बहुत दुखी है और साथ साथ में उनके मन में कुछ है, क्या है वो मन में है वो बात मैं कहना चाहती हूं। वो नहीं कह सकते तुमको, क्यों, वो बहुत डरते हैं तुमसे, तुमसे क्रोधित नहीं है, वो बहुत दुखी है। देखिए कितने कठोर हृदय वाली है कैकेयी। अभी सीधा राम से कहती है, साम बाजू में उनकी पति है दशरथ है, उनके साथ में कहती है, वो तुम्हारे पिताजी तुमसे बात करने में डरते हैं, उनके मन में कुछ चल रहा है, उनके कंठ से कुछ शब्द अभी निकलेगा नहीं क्योंकि तुम बहुत प्रिय हो उनके लिए और उन्होंने मुझे एक वचन दिया था और ये वचन जो उन्होंने मुझे दिया था वो केवल तुम्हारे द्वारा ही सिद्ध होगा। कर्तव्यम यदो श्रुतम, उनका तुम्हारा कर्तव्य बनता है उनकी वचन को सिद्ध करना, वो केवल तुम्हारे द्वारा होगा। क्या कहती है, ने कहा एषा मह्यम वरम दत्वा पुरा, बहुत पहले की बात है पुरा, एषा वरम दत्वा, मुझे वर दिया था, माम अभिपूजया, क्योंकि मैं उनको बहुत सेवा की थी तो ये सेवा की वजह से उनको युद्ध में मैंने बहुत सहायता की थी, उसकी वजह से उन्होंने दो वरदान मुझे दिया था। तो तुहे राम तुम जानते हो धर्ममूलम इदम रामम विदितम च सतामपि, तुम भी जानते हो राम और मैं भी जानती हूं और साथ साथ में सतामपि सारे सद्गुण वाले सारे संत लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, धर्ममूलम इदम सत्यम, सत्य जो है धर्म का मूल बनता है। अब देखिए इस श्लोक से आया है क्या किया कह गया इन्हें कि धर्म जो है वो सत्य के ऊपर आधारित है, धर्म परिवर्तन होता रहता है लेकिन सत्य परिवर्तन होता नहीं है। और राम सुनो, अभी ये जो तुम्हारे पिताजी है ना, अपना धर्म को निमान करने के लिए सत्य को त्याग करने के लिए मत बोलो। यदि तद्वक्षते राजा, यदि तद्वक्षते राजा शुभम वा यदि अशुभम, शुभ हो अशुभ हो उससे कोई मतलब नहीं है, सत्य महत्वपूर्ण है। करिष्यसि तथा सर्वम, अभी आपको जो राजा जो बताने वाले हैं उसको करना पड़ेगा, वो नहीं बता पाएंगे मैं स्वयं बताऊंगी। तो क्या है आपको क्या करना होगा, वनवास जाना होगा। और बोलने से पहले भगवान रामचंद्र स्वयं कहते हैं कि हे रानी आप जो कह रहे हो आप कह दो, क्योंकि मेरे पिताजी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, सागर में डूबने के लिए तैयार हूं, मैं आग में भी डूबने के लिए कूदने के लिए तैयार हूं। ने कहा पिता पाण्ये च हिते न चा, मेरे पिताजी का हित के लिए मैं कुछ भी जहर को भी पीने के लिए तैयार हूं, क्योंकि राम का स्वभाव है। सुनो करिष्ये प्रतिज्ञा, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। ये देखो राम जो है, रामः द्विर न अभिभाषते, द्विर न अभिभाषते, राम के पास दो वचन नहीं होते, आगे पीछे नहीं होता है, द्विर न अभिभाषते प्रतिज्ञा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मेरे पिताजी जो कहना चाहते हैं जो भी उनकी आदेश है मैं उसको पालन करूंगा। तब कैकेयी बताने लगी, हे राम अगर सच में तुम अपने पिताजी का आज्ञा स्वीकार करना चाहते हो, वो आपको कहेंगे नहीं मैं कहूंगी, सुनो क्या है वो, तुमको सबसे पहला वनवास जाना होगा और दूसरी बात क्या है, भरत को राजा बना होगा। और कितना दिन, सप्त सप्त च वर्षाणि दंडकारण्यम आश्रितः, सप्त सप्त च वर्षाणि, सात और सात मिला के 14 दिन दंडकारण्यम आश्रितः। और वो भी कैसे है, कैसे रहना होगा, अभिषेकम इमं त्यक्त्वा जटा चरी धर वसा, ऐसा नहीं कि तुम उधर जाके दंडकारण्य में जाके संपत्ति लेके जाओगे सब महल बनाओगे इधर रहोगे, नहीं कैसे रहोगे, जटाधारी बन के रहोगे, जटाधारी के साथ साथ में चरी धरा चारी धरा, चारी मतलब जो जूट का कपड़ा होता है या कोई घास से बना हुआ कपड़ा होता है उसको धारण करके तुमको रहना होगा। बरातः कोशलपुरे प्रशास्तु वसुधाम इमाम, कौशल में रहेगा, कौशलपुरा अयोध्या में रहेगा भरत, और क्या करेगा, वसुधाम इमाम पूरा पृथ्वी का राजा बनेगा। ऐसा नहीं कि दंडकारण्य में जाओगे तुम्हारा राजा बने रहेगा, अरण्य का भी राजा बनेगा। भरत अगर कोई शासन देगा तुमको करना पड़ेगा। नानारत्न समाकीर्णम, नानारत्न समाकीर्ण अनेकों अनेक रत्नों के साथ वो आनंद को अनुभव करेगा। सवाजी रथ कुंजरम, सारे जितने भी अश्व है, सारे जितने भी सेना है, सब सेना भरत के अंडर में रहेगी। ये तेन त्वम नरेन्द्रोयम, इसी के लिए कारुण्येन संपुत्ता, इसी के वजह से ये बात सुन के ये दशरथ जो है वो तुम्हारे प्रति बड़ा दया की भावना रखे हैं और वो बोल नहीं पाते हैं, इसके वजह से बहुत दुखी है। तो इसलिए राम क्या करो, एतत् कुरु, एतत् कुरु, कौन दे रही आदेश, कैकेयी राम को आदेश दे रही है, एतत् कुरु तुमको करना पड़ेगा, तुम करो। राम सुन रहे इस बातें को, सुन के एकदम बिल्कुल शांत। इति वतस्याम पुरुषम वद्यताम, इस प्रकार पुरुषम वद्यताम इस प्रकार बोलने के बाद भी न चैव राम प्रविवेश शोकम, शोक राम के मन में जरा सा भी प्रवेश नहीं किया। देखिए अभी पट्टाभिषेक होने वाला है, कल अगर कोई आपको कोई कुछ भी कहता है कल आपको कुछ मिलेगा नहीं, कोई छोटी चीज भी मिलेगा नहीं, तो शोक होता है। तथापि नहीं न चैव रामः प्रविशे शोकम, जरा सा भी शोक प्रवेश नहीं किया, एकदम शांत राजा। तू आगे वर्णन आता है, राम इस बात को सुन के कैकेयी के हैं, आप जैसे कह रहे वैसे ही होगा, मैं वो करूंगा। ऐसा कह के प्रणाम किया, किसको, दशरथ और कैकेयी दोनों साथ में रामचंद्र प्रणाम करके गए। वो सीधा गए कहाँ, कौशल्या के पास। अब देखिए कौशल्या को संभालना है भगवान रामचंद्र को, सीधा कौशल्या के पास गए तो कौशल्या बड़े आनंद के साथ राम को स्वागत किया। आओ आओ बेटा, तुम्हारा जो पिताजी है सत्य प्रतिज्ञाम पितरम कहती है, सत्यम प्रतिज्ञा पितरम, जो तुम्हारा पिताजी जो है ना उनकी प्रतिज्ञा सत्य रहता है, उन्हें सबको कहा ना कि तुम राजा बनोगे। अभी कौशल्या कहने लगी राम को, इतना दिन से इस दिन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि हमेशा तुम्हारे जो पिताजी है ज्यादा ध्यान कैकेयी को देते थे, अभी तुम राजा बनोगे तो मेरा आनंद उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम राजा बनोगे, अनेकों दिनों से इंतजार कर रही थी, वो दिन आया है। अभी ऐसे बोलते बोलते तुम्हारे पिताजी ने कहा ना, दो दिन पहले सबको घोषणा किया ना, तुम राज बनोगे, इस प्रकार कहिए सत्यम प्रतिज्ञाम पितरम, बड़े मासूमियत से बोल रही है, कौशल्या को मालूम नहीं है। तो रामचंद्र का हाँ सही बात है, सत्यम प्रतिज्ञाम पितरम राजम पश्य राघवा, ये राघव तुम्हारे पिताजी कितने अच्छे देखो, क्योंकि वो हमेशा सत्य के पक्ष में रहते हैं और सत्य प्रतिज्ञा को पालन कर जो प्रतिज्ञा किया वो करते हैं। तब ऐसा कौशल्या कह रही बड़े आनंद के साथ, राम ये सुन रहे हैं, उनके चेहरे में कोई भी दुख का अनुभव या कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो राम कौशल्या को किस प्रकार बोलते, देखिए वो राम सस्वभाव विनीतः, सस्वभाव विनीतः च गौरवश्च तदा आनतः, अनेकों अत्यंत गौरव के साथ पतिस्तो दंडकारण्यम, दंडकारण्य जा रहा हूं करके इस बात को वो कौशल्या को कह रहे हैं। क्या कैसे कहते, देखिए सुंदर तरीके से कहते, देवी नूनम न जानिए जानीशे महत भयम उपस्थितम, देवी आप जानते नहीं हो, आपको एक भयानक सा खबर मिलने वाला है। महत भयम उपस्थितम, महान भय आपके सामने खड़ा है। सीधा ये नहीं कहा कि मैं दंडकारण्य जा रहा हूं, महान भय खड़ा है, केवल आपके लिए नहीं है, इदम तव अच्छा दुखात वैदेह्या। आपके साथ साथ में ये जो कवर और किसको दुख लगेगा, वैदेही यानी सीता जी को दुख लगेगा, और लक्ष्मणम च, लक्ष्मण को भी इस खबर से दुख लगेगा। केवल तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे सामने एक भय उपस्थित है। क्या है वो भय? ने कहा गमयिष्ये दंडकारण्यम, मैं दंडकारण्य गमयिष्ये जा रहा हूँ। किम मनो मनोनाशनेन मे, क्योंकि कौशल्या ने कहा था कि आओ पुत्र इधर आसन में बैठो, तुम्हारे बहुत भोजन पका के तुम्हारे सामने रखी हूँ, बैठो, सोने का सिंहासन है, खाने का आसन है, उस पर बैठो। तुमने कहा कि नहीं, मैं दंडकारण्य जा रहा हूँ तो ये आसन की क्या जरूरत है, और मैं तो जंगल में रहूँगा, और वो भी कितने साल के लिए, 14 साल के लिए रहूँगा, और मैं क्या करूँगा, और आमिषम त्यक्त्वा अनेकों अनेकों भोजन के पदार्थ को त्याग करके हित्वा मुनिवद, मुनिगण जो खाते हैं ना कंदमूल इत्यादि और मधु मूल फले ही जीवनम, उससे मैं जीवन यापन करूँगा। और बाद में उन्होंने कहा भरताय महाराजो, देखिए राम के मुख से क्या निकल रहा है, अभी उनका राज्य है, अभी भरत उस पर बैठने वाला है और उनके ऊपर पॉलिटिक्स खेला गया है, एक तरह कहा जाए तो भरत आय महाराजो, भरत का गुणगान कर रहे हैं, ये महाराजा है भरत, एवा राज्यम प्रयच्छति, उनको राज्य पिताजी ने दिया है, मम पुनर्दंडकारण्यम, वापस दंडकारण्य में रहने के बाद तपस्या करके वापस आऊंगा। अब देखो रामचंद्र कहते कौशल्या को, हे कौशल्या, हे माँ, पिताजी का कितना बड़ा दिल है, देखो मुझे अरण्य भेज रहे हैं, अरण्य में मुझे अनेकों अनेकों तरीके से तपस्या करने को साधन मिलेगा, और 14 साल के लिए जो है मैं एकांत में रहूँगा और अनेकों अनेकों साधुओं का संग करूँगा, इसमें भी मुझे मेरी अच्छाई है, ऐसा कह के कौशल्या को कह रहे हैं। और कौशल्या इस बात को सुन के बहुत दुखी हो गई, दुखी होके राम से बोलने लगी, हे राम ये ठीक नहीं है, दशरथ जो है वो भले ही उन्होंने आपको कहा कैकेयी के वश में आके, ये ठीक नहीं है, इस प्रकार नहीं करना चाहिए, भक्त्या ममार चैवाद्य राजा प्रभाविता प्रभु। तो राम कौशल्या की इन सब बातों को सुन के वापस कौशल्या को समझा रहे हैं, कौशल्या ने निंदा किया पति का, इस प्रकार की थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, बहुत सारे बातों को कहा कौशल्या ने, राम शुरू किया, रोती हुई कौशल्या, पहले बेहोश हो गए थे कौशल्या, उनको उठा के कौशल्या की सारे बातों को सुन के राम ने वापस कौशल्या को कहने लगे, बहुत सुंदर उपदेश दे किए, भगवान रामचंद्र है उनकी माँ को उपदेश दे रहे, माँ को कह रहे हैं, उन्हें कहा तम तथा रुदतीम रामः रुदम वचनम अब्रवीत, इस प्रकार बोलने लगे, क्या बोलने लगे, जीवंत्या ही स्त्रिया भरता दैवतम प्रभुरेवचा, ने कहा जीवंत्या, जीवंत्या ही स्त्रिया धर्म, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, ने कहा भर्ता, उनकी जो पति होते हैं ना भर्ता को कैसे देखना चाहिए, दैवतम प्रभुरेवचा, भगवान के रूप में दैवतम और उनका प्रभु के रूप में देना चाहिए, भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवती प्रभु, ने कहा दशरथ जो है मेरे लिए प्रभु है, वो मेरे पिता है, मेरे राजा है और मेरा गुरु है, मेरे सर्वस्व है, इसलिए उनका आज्ञा को स्वीकार करना मेरा परम कर्तव्य है। तो के कौशल ने कहा तुम मेरे पुत्र हो, अस्यत में राम ने कहा भले ही मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अस्यत में पिता वास्तविक गुरु होता है, उनका आज्ञा मानना केवल मेरा ही कर्तव्य नहीं है, आपका भी कर्तव्य है। बाद में उन्होंने कहा भरत जो है बहुत अच्छा व्यक्ति है, भरतश्चापि धर्मात्मा वापस धर्म भरत का वर्णन किया। भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वभूत प्रियम वदहा, सारे लोगों से बड़े प्रेम से बात करता है भरत ने कहा। ये भरत जो है सा ही धर्मर्थ सदा, धर्मार्थ को काम मोक्ष अच्छी से जानने वाला है, इसलिए भरत के साथ में आप रहो, भरत के आदेश के अनुसार आप रहो, भरत के संरक्षण में रहो। यतामती तो निष्क्रांते पुत्र शोकेन पार्थिव, ये सब बातें सुन के पुत्र शोकेन पार्थिव, मैं जा रहा हूँ, मुझे मालूम है आपका पुत्र शोक है, लेकिन 14 साल की बात है, जल्दी वापस आ जाऊँगा। और उन्हें कहा कि कोई भी स्त्री होती है वो हमेशा सद्गुणों से संपन्न होना चाहिए। दारुणस्य, अगर मान लो कि उनकी पति बहुत दारुणस्य, बहुत अनेकों दुर्व्यवहार भी करता है, फिर भी उनका ही सेवा करना चाहिए। और अगर कोई स्त्री है बहुत सारे व्रत करती है, तपस्या करती है, भगवान की आराधना करती है, सब कुछ करती है, जप करती है, अगर वो पति का आज्ञा नहीं मानती है, भर्तारम न अनुवर्तता, अगर उनके भर्ता उनकी पति का अनुवर्तन नहीं करती है, अच्छा पाप गतिम भवेत, उनको पाप लगता है। व्रत उपवास निरता या भी, व्रत करने पर भी, उपवास करने पर भी, अनेकों तथाकथित धार्मिक भक्ति के तपस्या के कार्य करने पर भी अगर भर्ता का अनुगमन नहीं करती है तो वो निश्चित रूप से उनको पाप लगता है। वर्तु शुश्रूषणा नारी लभते स्वर्गम, मान लो कोई जब तब कुछ नहीं करती है कोई स्त्री, लेकिन अगर कोई वर्तु शुश्रूषणम, अगर को अगर वो स्त्री पति का सेवा करती है, ये धर्म पुरा दुष्ठा लोके वेदश्रुतास्पदा, तो निश्चित रूप में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और साथ साथ में वो जो हमेशा पति की सेवा करती है, ऐसा देखा गया है अनेकों पुराणों में, अनेकों धर्मशास्त्रों में, ये पति का सेवा करने मात्र से धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि कर लेती है। इसलिए हे माँ ने कहा, हमेशा ये समझो कि ब्राह्मणों का सेवा करना और यज्ञ इत्यादि करना वो सब चीज़ें जो है वो गौण है, पति का सेवा करने सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, तुम इंतज़ार करो, 14 साल के बाद मैं आऊँगा, आके आपका आपकी जो प्रेम है उसको मैं अच्छी तरीके से। और जैसे भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार कहा, कौशल्या आंखों में आंसू बहाते हुए क्या शब्द कहा, देखिए नहीं ये प्रतिशोध दी क्या, पति क्या होता है मेरे लिए, पुत्र सब कुछ है वो है कुछ, इस कुछ बात ने कहा, ने कहा गमने सुकृताम बुद्धिमान, हे बुद्धिमान पुत्र, ने कहा कि तुम वीर हो, तुम बड़े वीरवान हो, इस प्रकार का बोलना साधारण चीज नहीं है। कौशल्या कह रही है अपने राम को, तुम वीरवान हो, समय जो है किसी का बात नहीं सुनता है, मैं निश्चित रूप में जैसे उन्होंने कहा कि मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा, अभी क्या करो तुम, गच्छ पुत्रत्वम एकाग्रे भद्रते भद्रमते, गच्छ तुम जाओ जाओ अभी जाओ, भद्रमते मैं तुमको आशीर्वाद देती हूं, पुनस्त्वापि निवृत्तते तु भविष्यति, मैं तुम्हारा वापस आने का इंतजार करूंगी। प्रत्यागते महाबाहो कृतार्थे चरित्रम तवा, तुमने जो त्याग किया है वो त्याग की वजह से कृतार्थे चरित्रम तवा, तुम्हारा चरित्र कृतार्थ हो गया है, तुम जाओ करके कैकेयी रामचंद्र को बोल रही हैं। रामचंद्र जो है वो गच्छेदानी महाबाहो क्षेमेण पुनरागतः, क्षेमा बहुत क्षेम से वापस आना, मैं प्रार्थना करूंगी। नंदयिष्यसि माम पुत्रः सात्मा काव्येन चारुणा, उन्होंने कहा कि जब जा रहे हो ना दुखी होके मत जाना बेटा, बड़े आनंद के साथ जाओ, और जंगल में 14 साल रहने के बाद वापस आनंद के साथ जाना, मैं लेकिन बात ने कहा अगर कितना अच्छा होता आज के दिन ही वो दिन होता कि तुम वापस जंगल से आ रहे हो। ऐसा बात करके कौशल्या ने राम को अनुमति दिया। जब कौशल्या ने राम को अनुमति इस प्रकार दिया, अभी राम के लिए और एक संशय है और एक समस्या है। क्या है? सीता को कैसे समझाऊं इस बात को। लक्ष्मण को ठीक है, वो बहुत क्रोधित हो जाता है, वैश्य हो जाता है कि मेरे बिना तो रह नहीं सकता, वो मेरे साथ में आएगा, फिर भी उनको समझाने के लिए प्रयास करूंगा, मत आओ। लेकिन सीता को कैसे समझाऊं, ये बड़ी समस्या है राम को। अभी सीता के पास गए भगवान रामचंद्र सीता को इस बात को बताने के लिए। तो सीता के साथ भगवान रामचंद्र का जो संवाद है उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में 5 मिनट में चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे, जो बड़ा अद्भुत संवाद है सीता और रामचंद्र का। एवं उक्त्वा वैदेही, उन्हें कहा सीता के पास जाकर, ऐसी ऐसी बात है, आप इधर रहो, 14 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊँगा। सीता जी कहती हैं, क्या क्या कहती हैं, किमिदं भाषते रामः, बड़े क्रोध के साथ। वाल्मीकि जी लिखते हैं, प्रणयात एष संक्रुद्धः, प्रणयात एष संक्रुद्धः, सीता जी का प्रण प्रेम, प्रेम में क्रोध है। प्रणयात एव संक्रुद्धः भर्तारं इदम् अब्रवीत, भर्तारं राम से इस प्रकार कहने लगी। क्या कहने लगी, किमिदं भाषसे रामः, रामा नाम से पुकार रही है, क्योंकि क्रोध में आप करके नहीं आता है, रामा किमिदं भाषसे, क्या बात कर रहे हो आप, वाक्यम लघुतया ध्रुवम, ये हल्की सी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। त्वया यद अपहायन्ते मे श्रुत्वा नर वरात्मजम, तो ये बहुत गंभीर बात है, इसको हंसते हंसते बोल रहे हो और मुझे इसको छोड़ के तुम आप अकेले जाना चाहते हो। आर्य पुत्रा पिता माता भार्त्रा पुत्रा तथा स्तुषा, तो आप ही सब कुछ हो मेरे लिए, आप मेरे लिए आर्य हो, आप मेरे पुत्र हो, आप मेरे सब कुछ हो, मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं जी नहीं सकती हूं। भरतुर भगवत भाग्यम तु भार्या, क्या शब्द बोल रही है सीता, देखिए, भरतुर भाग्यम तु भार्या, भार्या एक पत्नी का, उनकी पति जो है उनके भाग्य होता है, यानी उनके पति के भाग्य में जो है उसको अपना स्वीकार करना पड़ता है। भरतुर पत्नी भाग्य, भरतुर भाग्यम तु भार्या एक प्रात्येन पुरुषर्षभा, ये जानती नहीं पुरुषर्षभा, आप बड़े ज्ञानी हो, अतच्चैव अहम् आदिश्ये वनम्, वने वन में मैं भी आऊंगी, आप आदेश करो मैं साथ में आपके साथ में आऊंगी। न पिता न आत्मजो न आत्मा न माता न सखी जनहा, कोई भी इन सब में कोई लोग जो है ये आपके सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं। आप पति जो हैं पत्नी के लिए एकमात्र गति है। यदि त्वम प्रस्थितः दुर्गम वनः, आप अगर सोचोगे दुर्गम वनः वन में कैसे मैं चल सकती हूँ, ऐसा अगर आप सोचोगे तो मैं क्या करूँगी, अग्रतः ते गमिष्यामि, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सीता जी कह रही है आप अगर सोचते हो कि मैं बहुत कोमल हूँ और चल नहीं सकती हूँ, अभी मैं बताना चाहती हूँ, अग्रतः ते गमिष्यामि, आपसे पहले जाऊँगी, मैं आगे आगे जाऊंगी और आप पीछे पीछे चलना, क्यों, क्योंकि मृदानि तव कुशकंटकान, कहीं भी जब आगे जाऊंगी ना तो जो कांटे होंगे तो कांटे मुझे लगेंगे, आप पीछे आओगे तो आपको कांटे नहीं लगेंगे, वो कांटे को निकाल के फेंक दूंगी, और कुशकंटकान घास वगैरह इत्यादि रहेगा तो उसको साफ करूंगी ताकि आप आ सकते हो। देखिए क्या क्या बोल रही है सीता इधर, और इसके पीछे एक परोक्ष अर्थ भी हो कहना चाहता हूं, ये आग्रता ते गमयिष्यामि मृदानि ते कुशकंटकान, ये श्लोक बोल के सीता जी ने कह दिया। देखिए कुशकंटकान ये कौन है, राक्षस है, आप राक्षसों से मिलने से पहले मैं पहले जाऊंगी। रामायण तो यही है ना, यानी भविष्यवाणी कर दिया सीता ने और कह दी आप तो राक्षसों से मिलोगी बाद में, रावण इत्यादि से मिलोगी बाद में, मैं पहले मिलूंगी उनसे। और बाद में भी कहती हैं मैं उनको साफ करूंगी। ये मत सोचिए राम ने रावण को मारा, सीता ने मारा है। इसे सीता स्वयं ने कहा अग्रता ते गमयिष्यामि मृदंती कुशकंटकान, मृदंती मतलब साफ करके कर दूंगी। और बाद में कहा ये बहुत ये श्लोक सुन के हो जाए, ईर्षा रोष वहिषम कृत्य भुक्त शेषम इव उदकम, उक्त शेषम उदम उदकम। किस प्रकार के पुरुष हो आप, भुक्त शेषम इदम उदकम, आपने ग्लास में पानी लिया, थोड़ी सी पानी पिया और छोड़ दिया, ये ठीक है क्या? मुझे आपने स्वीकार किया, थोड़ी देर रखा और छोड़ दिया, ठीक है? ऐसा लगता है कि आप ईर्ष्या और रोषवश इस प्रकार कर रहे हो मेरे साथ। ईर्ष्या को त्याग करो, रोष को त्याग करो। कौन कह रही है? सीता राम को कह रही है। अभी ये राम में रोष कहाँ है, राम में ईर्ष्या कहाँ है? सीता कहती हैं अगर आप मुझे साथ में लेके जाओगे, आपको क्या ये डर है कि लोग मेरी स्तुति करेंगे, आपकी स्तुति नहीं करेंगे? क्योंकि सीता जाएगी क्या बोलेंगे, देखो सीता इतनी बड़ी, इतनी सुकुमारी है, राजकन्या है, वो जंगल में चल रही है, राम के बारे में कोई बात नहीं करेगा? ये डर है क्या आपको? आप अकेले जाओगे और देखो सब लोग बोलेंगे राम अकेले, ये सब स्तुति करेंगे। ईर्ष्या को छोड़ो, आप रोष को छोड़ो। ईर्ष्या रोषो वह वहिषा कृत्या नय मान वीर विशब्द पापम मई न विद्यते, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं होता है। प्रसादाग्रे विमान वैहास्य गतने वा, इन श्लोकों के द्वारा कह रही है कि कितने बड़ा विमान क्यों ना हो, कितने बड़े घर क्यों ना हो, उसमें मैं रह नहीं सकती हूँ, मैं अस्तित्व में आपके साथ भी रहूंगी। अनेक अनेक श्लोकों में सीता जी ने बहुत कहा लेकिन रामचंद्र ने स्वीकार नहीं किया, नहीं इधर ही रहो। आखिरी बाण छोड़ा सीता जी ने कहा आप अगर कहते हो तो मैं रह जाऊंगी, लेकिन मुझे डर है मेरे पिताजी आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे मालूम है? नारी नरवेशेण एक नारी नर का रूप धारण करके मेरे राज्य में आई थी और मैंने अपनी कन्या को उसको दे दिया है क्या? कितना हृदय में भाण को छूने वाली बात है। कभी कभी जब पत्नी बोलती ना पति को उनको अनुभव है बात। सीता भी नहीं, सीता जी ने नहीं छोड़ा राम को, मायके में मेरे पिताजी यही सोचेंगे कि आप क्या पुरुष है कि स्त्री है। ये बात सुन के राम को रहा नहीं गया, ने कहा चलो आगे स्टोरी में आता है। राम ये भूला नहीं इस बात को, जब आगे आता है अरण्यकांड में एक राक्षस को वध करते मारते हैं, जब राक्षस को मारे ना, अनेकों राक्षस आए, संतों से मुलाकात हुआ अरण्यकांड में, जब राक्षस एक राक्षस ऐसा था उनके मुख से ऐसा खून निकला, मरने समय पूरा शरीर में खून 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 से लपेट हुए, तो लक्ष्मण के ऊपर ही खून था, राम के ऊपर ही, राम ऐसे आके खड़े हैं, सीता जी देख रही है राम को, राम ऐसे दिखाई देखो, इतना बड़ा राक्षस को मारा। और सीता जी, पहले कहा गया राम और सीता ऐसे, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, आई लव यू, आई लव यू भी है, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हृदय हृदय से बात होता है ना दोनों के बीच में। तो राम हृदय से ही कोई इशारा दिया, मेरी पुरुषत्व के ऊपर शंका था ना, अभी देखो इस राक्षस को। तब सीधा भाग के आए, राम को सीधा आलिंगन किया उन्होंने, अभी स्वीकार, अभी पुरुष हो आप, अभी शंका। तो ये रामायण है। अभी सीता के साथ संवाद हुआ, और लक्ष्मण के साथ संवाद तो अब हम लेंगे नहीं, क्योंकि वो और है। ऐसा वर्णन आता है, लक्ष्मण जो है एक क्रोधित सांप होता है ना, वो सांप के जैसे देख रहे थे, राम ने उन तक देखा तक नहीं। कौशल्या से मिलने गए और सीधा सीता से मिलने गए, और लक्ष्मण जो है सीधा आके बहुत सारे बातों को कहा, राम ने कहा नहीं तुम इधर रहो। तब सीता की ओर देख के लक्ष्मण कहते हैं कि घाड़ानी, घाड़ तरीके से, घाड़ से चरणानी, आपके चरण को मैंने पकड़ लिया है, जाओगे तो मेरे साथ में, नहीं तो जाओगे ही नहीं। तो राम को देख के नहीं बोल रहे, सीता को देख के बोल रहे लक्ष्मण। इस प्रकार सब तैयारी हो गए, सीता राम लक्ष्मण जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? जब उसी मुहूर्त पे जब उनका राजा राजत्व क्या अभिषेक होने वाला था, राजाभिषेक होना, पट्टाभिषेक होने वाला था, उसी समय जा रहे हैं। दशरथ की सारी पत्नियां खड़ी हैं, और कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों खड़ी हैं, और सब लोग जा रहे हैं। राम ने कौशल्या को प्रणाम किया, कौशल्या को राम ने प्रणाम किया, उसी समय सभी लोगों ने कौशल्या को प्रणाम किया। अभी तुरंत लक्ष्मण किसका प्रणाम, किसको प्रणाम कर रहा है? सुमित्रा। सुमित्रा का वचन सुनने लायक है, वो हम कल सुनेंगे। सुमित्रा किस प्रकार लक्ष्मण से क्या बात करती है, सुमित्रा का नाम सुमित्रा क्यों है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, और आगे भी जितने भी हो सके हम भक्तिमय बातों को कुआ केवट के साथ उन सब संवाद को हम कल आखिरी दिन है करेंगे।